हे गिरिराज जी की, गिरिराज जी की जय हो, जय गिरिराज। और वो धीरे धीरे स्नान के सब कुछ उठ करके शिवजी दूसरी खड़ी हो गई, वहां में खड़ी आज हो गई बहुत मस्ती, ये तो बड़ी गिरिराज जी की बड़ी है। तो उसने वहीं पर प्रणाम किया और फिर सरक करके फिर प्रणाम किया, कल जैसे मैं आए थे प्रणाम दंडवत। छह सात महीने के तक परिक्रमा किया और फिर जब वहीं पर आकर के दान खाती है पुलिस ने, जब तक जीवित रही 60 वर्ष तक उसने किए, लोग उसको अपने आप उसके पास में भोजन इत्यादि सब भेज देते। अभी 5-7 वर्ष या 10 वर्ष हुआ है, अभी कबीरस्थान मथुरा में देहांत हुआ या ये हुआ, और वहां वाले मथुरा वाले सब लेकर के और वहां पर उत्सव किया, हमको भी बुलाए, मैंने कहा कि क्या बात है तो हमको बताए। अभी प्रति वर्ष वो लोग करते हैं, ये तो संसारी की बातें कहा। रूप सनातन गोस्वामी जैसे शिक्षणाचार्य बलदेव उनके बल्लभाचार्य के पुत्र, उसके पहले रामानुज मध्य इत्यादि जो हम जिनका प्राचीन इतिहास देखते हैं। अरे मैंने स्वयं कृष्ण को देखिए, ब्रजवासी लोग लड्डू खाते हुए, पकवान खाते हुए, चीनी खाते हुए, कोई नहीं चल सकता गाड़ियों में भी बैठ करके, और गिरिराज जी का महिमा का गुणगान करते हुए और परिक्रमा कृष्ण ने किया। कृष्ण की अभिलाषा भी गिरिराज जी पूर्ण करते हैं और लोग कृष्ण की अभिलाषा करते हैं। इसलिए यदि कोई परिक्रमा करता है गोवर्धन गिरिराज जी की, गिरिराज जी वहां पर समय किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, एकदम इसको सत्य परम सत्य मानिए, जरूर आए और आकर के जानना चाहिए इसकी क्या इच्छा है, जरूर जानना चाहिए। यदि आपने बोल दिया कोई प्रार्थना से, यदि पत्थर के ऊपर में पत्थर रख दिया तो समझ जाएंगे ये विवाह चाहता है, घर जाना बनाना चाहता है। यदि दो पैरों के डालियों को यदि जोड़ दिया, दोनों लताओं को जोड़ दिया तो ये विवाह करना चाहता है, ये विवाह करना चाहता है। यदि कोई कहे हमारा रोग दूर हो जाए, ऐसी संसारिक बातों को चुट चुट बजाते हैं वो कर देंगे, क्योंकि एक चीज से थोड़ा चिंतित हो जाते हैं क्या। यदि ये कहे कोई राधा कृष्ण की प्रेम भी भक्ति हो, विशेष करके परिवासियों की जैसे कृष्ण के प्रति प्रीति थी, उनमें भी सखाओं की जैसे प्रीति थी कृष्ण में, और उन सखाओं से भी अधिक नंद यशोदा का कृष्ण के प्रति जैसा कोई कम ना रहित प्रेम था, स्वच्छ निर्मल, और उनसे बाकी गोपियों का जैसा प्रेम था वह प्रेम हमारे हृदय में प्राप्त है। गिरिराज जी आपके पास परमात्म मदन लीला कंदरे कंदरे से रति अति नवजू नमंदम करना गिरिराज, यही हमारे वो समय तो प्रार्थना करते हैं आपकी संग्राओं में, आपकी परिक्रमा के चारों तरफ में लताओं में कुंजों में गुफाओं में आपकी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं जो कि ब्रह्मा जी को देखने का शंकर जी को देखने का भी सौभाग्य नहीं हुआ, वो लीलाएं हमारे हृदय में हमारा जीवन धन्य। इसलिए गिरिराज जी प्रार्थना को सुन करके थोड़ा सा चिंतित होते हैं, ऐसा दुर्लभ वस्तु दूं या न दूं, किंतु बार बार ऐसी यदि इच्छा हो गिरिराज जी अवश्य दे देते हैं। 5 चीजों को बतलाया गया जो ब्रज का प्रेम देते हैं, एक जमुना जी, दूसरे एक गिरिराज जी, राधा कुंड श्यामकुंड, वृंदा देवी, ललिता देवी, विशाखा देवी, ये सब इन चीजों को दे सकते हैं, दूसरे देने की सामर्थ्य नहीं है। संसार में इससे बढ़कर के और कोई लाभ नहीं हो सकता है, ये गिरिराज जी को एहसास रूप में ये दे सकते हैं। इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी हैं भक्ति की लालसा करने वाले सब गिरिराज जी के तलाटी में, लोगों की झूठी रोटी लेकर बिना खाए पिए बिना सोए गिरिराज जी की तपस्या यहां पर करते हैं। तब ऐसा प्रेम मिल सकता है, इस चीज को इस रूप में समझिए, हमारा धर्म कृष्ण का सेवा, कृष्ण की सेवा या कृष्ण का प्रेम है। प्रेम ही जगत का धर्म है और दूसरा कुछ नहीं। इसी प्रेम को पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति और अंत में प्रिय प्रेम कहा गया है। यह प्रेम किसी न किसी रूप में जगत के समस्त प्राणियों में है। एक बाघ के अंदर भी वो प्रेम है, वो अपनी पत्नी या बच्चों से प्यार करता है, किंतु हट करता है, दूसरों को कमा करके खा जाएगा, किंतु प्रेम उसमें है। ठीक, प्रेम उसमें है। उसी प्रकार संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें कुत्ते में भी प्रेम है, अपने बच्चों से प्यार करता है। इसमें धर्म का कोई भी नहीं है कि हिंदू धर्म है कि ईसाई धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, कोई भी हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, उसका समय जरूर प्रेम रहेगा। यही प्रेम ही आत्मा का धर्म है। उसमें यह सब डिविजन नहीं है, उसमें कोई हिंसा द्वेष नहीं है परस्पर, इसलिए गिरिराज वो प्रेम दे सकते हैं। जगत में वो सब चीजें नहीं है, इससे आप देश कलंक कुछ नहीं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी आए इस जगत, उन्होंने कहा सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, यहां तक कि दूसरे जाति वाले हो, कोई भी हो, इस प्रेम धाम का पाप कर इसे जगत में नाम प्रचार किया। क्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही भर यही भजन से ही अभक्त कृष्ण भजन। जाति कुल नहीं विचार, जाति खून इत्यादि का कोई भी विचार नहीं है। कोई भी आकर के कृष्ण का भजन कर सकता है, इसमें आत्मा का धर्म है। यही प्रेम धर्म है। चैतन्य महापुरु ने इसकी चिकित्सा की, शिव भागवत में भी इसी का भजन। हम लोग उसी प्रेम के लिए, आत्मधर्म के लिए इस जगत में हम यहाँ पर आए हैं। गिरिराज जी हम पर सब पर कृपा करें कि हम लोग इसकी को समझ सकें। मैं समझता हूँ गिरिराज जी की वही सेवा होगी। बड़े बड़े लोग जो आज तक चाहते हैं सुंदर सुंदर रूप में पेड़ हो, कुंज पहले जैसे कुछ हो, मयूर यहाँ पर फिर आए। 50 वर्ष पहले हमने देखा कि हिरणें फुदक रही हैं, आज वो हिरणें कभी देखने भी नहीं मिलती। पहले नील गाय भी अधिक थी, अब नील गाय को तो कोई बात नहीं। मयूर हम हमें 2-3 दिन से कभी कभी सुनते हैं, केका केका। कोयलों की ये आवाज ही नहीं सुन पाती, हिरण कभी नहीं देख पाती, और सब पशु पक्षियों की तो बात। हमारे माननीय ये क्या नाम ये मोदी जी हमसे कह रहे थे, हम क्या सेवा में होता है। मैंने कि इस सब चीज को ऐसे विकसित किया जाए जो लोग आए उनका हृदय परम पवित्र हो जाए। ब्रज की कुछ महिला देखे, आज ब्रज में कहीं नहीं हिरण नहीं, वो सब चीजें नहीं। जैसे साधु संत लोग निष्कपट होकर के बिना किसी संसारी कलावता के यहाँ पर रह करके भजन करते थे। उस चीजों को हम लोगों ने जो देखा है 50-60 वर्ष पहले, वो सब चीजें लुप्त हो गई यहाँ, और कहीं पूंजी नहीं दिखते। 50-60 पहले हमने देखा है इधर कुश्री की तरफ में जो गिरिराज जी का कुछ के समान है, बहुत सुंदर पंथा, बहुत आकर्षक, उसमें किरणें चल रही थी, मयूर सब घूमते रहते। तो यदि इस प्रकार का हम लोग वातावरण करें और तो इनकी रक्षा हो सके, इनकी स्मृति को हम लोग रक्षा कर सकें, तो हमारी ये सेवा यहाँ पर साधु संत ये सब आकर के अच्छी तरह से भजन कर सकें। इसलिए हम लोग इनसे प्रार्थना करते हैं, गिरिराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे ऊपर में कृपा करें और इन लोगों को भी ऐसी प्रेरणा दें जैसे कि गिरिराज जी की पहले जैसे मनोहर घाटियां और ये सब। आज यही करके वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं अपने माननीय डीएम के ये तो एक सब कुछ लोगों के सामने प्रस्तुत करें।
डीएम साहब का शुभ नाम।
परमात्मा के रूप में विराजमान पूज्यराज श्री गोवर्धन महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। परम पूज्य संत श्री नारायण जी महाराज पिताओं के संयोजन संत के श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। मित्रों, आप सभी वैष्णव जो कृष्ण के भक्ति में यहाँ बैठे हुए हैं, आपके हृदय में विराजमान भगवान राधा कृष्ण को मेरा कोटि प्रणाम है। मेरा ये सुखद संयोग कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए कि मैं आज दीपावली के अवसर पर मानसिंगा में दीपदान करने और दर्शन करने की लालसा से यहाँ आ गया था। मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग भी यहाँ विराजमान हैं, तो एक संत के दर्शन करने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे आपके इस जलसे में थोड़ी देर सम्मिलित होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं इस जिले में आया हूँ, बार बार मेरे मन में यही कष्ट होता है कि हम ईश्वर के स्वरूप को किस तरह से बचा नहीं पा रहे हैं,
उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं।
गोवर्धन और यमुना जी तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप में आज भी उसी स्वरूप में स्थित हैं जो कृष्ण अवतार के समय थे। प्रकृति और काल के धर्म के अनुसार स्वतः ही ईश्वर भी अपने स्वरूप में परिवर्तन करता रहता है, लेकिन गिरिराज जी और यमुना जी तो साक्षात उसी स्वरूप का होता है। जैसा अभी संत शिरोमणि ने कहा कि हमारी दृष्टि जितनी अधिक जा पाती है उतने ही हम उसके स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। हमारी अनंत जन्मों की जीवात्मा स्वरूप जो संगत वासनाएं हैं उनके कारण ही हम परमात्मा के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते। क्रमशः ईश्वर भक्ति के माध्यम से, परमात्मा की भक्ति के माध्यम से उसकी कृपा का आनंद लेकर के हम अपने वासनाओं का प्रक्षालन करते हुए ईश्वर के सानिध्य का क्रमशः अनुभव करते हैं, और संत कृपा और गुरु कृपा के माध्यम से वह ईश्वर जो निराकार है, जो अव्यक्त है, जो इस चराचर जगत का आधार है, जो स्वयं जगत ही है, अद्वैत वेदांत जहां जाकर के शांत हो जाता है, उसके अतिरिक्त जिसकी सत्ता कहीं नहीं जा सकती, उसका भी साक्षात्कार भक्त और संत प्रेम धर्म के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से उस परमात्मा को अवतरित कर लेता है। अगर जैसे माचिस के रूप में आपकी जेब में भी है, मेरे जेब में भी माचिस के रूप में आपने सुरक्षित रखी हुई है, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मेरे जेब में आग रखी हुई है, लेकिन अगर उसे आप माचिस को निकालें तीली को और उसके घर्षण करें तो आग पैदा हो जाएगी। उसी तरह से वह व्यक्त निराकार परमात्मा प्रेम धर्म का भक्ति का आश्रय लेकर के कृष्ण रूप में अवतरित हो जाता है, फिर लीलाएं भी करता है, गोपियां उसे नाच भी रचाती हैं, फिर वो समस्त लीलाएं करता है जो इस जगत का आधार है, जो इस चराचर जगत का वेदांत का ब्रह्म है, उपनिषदों का ब्रह्म है, जहां बुद्धि गम्य नहीं है, वो स्वयं ही सगुण अवतार लेकर के हमें सुलभ हो जाता है। तेजाहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योग्य, भगवान ने कहा ये जिम्मे बहुत सुलभ है,
लेकिन नित्य योगी भगवान ने कहा जो मुझे सदैव धाम के रहते हैं उनके लिए सुलभ पार्थ मैं सुलभ हूँ। सततम कीर्ति यंतो माँ ये जना पर उपासक है वो मुझमें ही तुष्टि पाते हैं मुझमें ही रमण करते हैं मेरी ही चर्चा करते हैं उससे बैठते कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव न उनके हृदय में उत्पन्न होता है न उनकी बुद्धि में आता है। उन्होंने अपने मन को बुद्धि को भी गिरवी रख रखा है। मई एव अमर आदर्श मई बुद्धि निवेश निवर्ति मई एव अर्थवृद्धम न चलतया मन और बुद्धि जब परमात्मा में ही गिरवी हो जाती है उसी में स्थित हो जाती है तो परमात्मा के सिर्फ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यो माम पृथ्वी सर्वत्र सर्व शर्मी पृथ्वी सत्याम न पृष्ठामी सत्य न पृष्ठी। आप क्रमशः भगवान के नाम कीर्तन से भक्ति मार्ग से उसकी लीला कथाओं से अपनी वासनाओं को क्षय करते हुए हम सड़ी सड़ई इन सरोवरों को उद्धार करते हुए बहु नाम जन्म से ज्ञानवान महाप्रपति वासुदेव सर्वोत्कृष्ट महात्मा की अनंत जन्मों की पुण्य होने के बाद केवल कृष्ण ही दिखाई पड़ता है कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई। महाप्रभु चैतन्य समुद्र भी देखते थे तो कृष्ण देखते हैं यमुना को देखते थे तो गिरवत करके उसके रंग को देखकर समझते थे तो श्याम है श्याम रंग भगवान का है। आकाश का रंग देखकर के रामकृष्ण परमहंस भाव युवर अगर गिर पड़ते यह प्रकृति का परमात्मा में समर्पण है। भाव समाधि के माध्यम से समस्त प्रकार की चेतना उसी परमात्मा में समर्पित हो जाती है। फिर देखना नहीं रहा फिर जानना नहीं रहा केवल हो जाना है कृष्ण के स्वरूप को देखते हुए रहते हुए उसी में प्रवेश कर जाने की स्थिति होती है। इस तरह से परमात्मा शरणागत के मार्ग से उपलब्ध हो जाता है। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है केवल व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो यह संसार में प्रकृति और पुरुष दो सत्ता है। परमात्मा अपनी प्रकृति के माध्यम से संसार में प्रकट है यह केवल व्यावहारिक संसार की सत्यता के आधार पर कहा जा सकता है। यदि सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के सुख दूसरी कोई सत्ता नहीं है। परमात्मा अपनी प्रकृति में स्वतः ही प्रकट है। यह जितना भी चराचर जगत है जड़ चेतन मणि गई यह केवल परमात्मा ही है इसके सिर्फ कुछ भी नहीं है। हमारी जब यूं स्थिति हो जाएगी तब हम भक्ति के माध्यम से अद्वैत भक्ति में स्थित होंगे। अद्वैत भक्ति क्या है? शिव होकर शिव की उपासना करना अद्वैत भक्ति है। आत्मा में स्थित होकर आत्मा की उपासना करना ही अद्वैत भक्ति है। कृष्ण होकर कृष्ण की उपासना करना अद्वैत भक्ति है। गोवर्धन स्वयं कृष्ण होकर के कृष्ण की उपासना करना अद्वैत भक्ति है। कृष्ण ही गोवर्धन है और गोवर्धन की उपासना स्वयं कृष्ण कर रहे हैं यह क्या लीला विलास है। केवल हम अपने ही प्रतिबिंब से खेलते हैं अपने ही प्रतिबिंब की उपासना करते हैं। मित्रों जब उस महाचैतन्य के साथ हम एकाकार हो जाएंगे तब वह व्यास अनंत परमात्मा हमारे साथ उठता है बैठता है खाता है पीता है हमारा सामान ढोता है हमारे पीछे पीछे चलता है और बाद में वो अपने भक्तों के सीधे सीधे चलता है। महाराष्ट्र के संतों ने यहाँ के भारतवर्ष के तमाम संतों ने यह प्रमाणित कर दिया है कि परमात्मा उसके वश में है। वेदांत चिल्ला चिल्ला कर कहता है भागवत चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ क्योंकि उनकी भूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा ईश्वर हमें कहाँ प्राप्त होगा? ऐसा ईश्वर भक्त सुलभ मुझे कहाँ प्राप्त होगा? वह केवल यही कृष्ण ही है। राधा में कृष्ण गोवर्धन में कृष्ण परमात्मा ही इसका भक्त उत्तर है कि वह हमें एक मिनट छोड़ना नहीं चाहता है। मित्रों जब तक मैं समझता हूँ कि आप महाभाग्यवान हैं कि आपको पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग हमारी तरह से हैं 90% लोग संसार में जिनको ईश्वर के बारे में अभी वो अवसर ही नहीं देता है कि हम पूर्ण रूप से उसकी आराधना कर सकें। हमें तो उसने महाभारत के युद्ध में जैसे अर्जुन की स्थिति है वो मेरी स्थिति है। तस्मात सर्वेषु कार्येषु मा मनस्मत युद्धस्य एक हाथ में तलवार और एक हाथ में तुलसी की माला लिए हुए अगर आप महासंग्राम में खड़े हो सकते हैं, इस तमोमयी रजोमयी सतोमयी समस्त चराचर प्रकृति को विस्पान करते हुए परमात्मा में स्थित रह सकते हैं, तभी आप ज्ञानी हैं, तभी आप समाधिस्थ हैं। सब कुछ करते हुए अगर आप समाधि में ईश्वर को ध्यान किए रहते हैं, वही वास्तविक उपलब्धि है। हमें तो उसने ऐसे महासंग्राम में कर रखा है जहां मेरे पास केवल तामसिक व्यक्तियों के लोग आते हैं, डाकू चोर दूसरों के सामान लेने के लिए ईर्ष्या द्वेष। इस चराचर जगत में जितनी प्रकार की कुरूपताएं हैं, माया का जो सबसे ही विभक्त स्वरूप है, वही वैसे ही लोग धारणा शक्ति के साथ मेरे पास आते हैं और बड़े निराश भी होते हैं, वो मुझसे सहायता भी चाहते हैं। आप जैसे सात्विक और दैनिक संपदा से संपन्न लोगों के साथ मुलाकात करने का अवसर मुझे बहुत कम प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो कम है। प्रकृति में सतोगुण की जो स्थिति है वो वैसे ही बहुत कम है, दैवी संपदा के लोग बहुत कम है। भगवान ने कहा कि लाखों लाखों लोगों में से एक मेरी आराधना के लिए सचेत होता है, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी तरफ प्रवृत्त होता है और हजारों प्रवृत्त होने वालों में कोई एक मुझे तत्व से जानता है। उसके बीच में किस प्रकार की साधना करना कि ईश्वर इस सब में है, सर्प में भी है, हाथी में भी है, डाकू में भी है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ये गोविंद करें सुनी चैन कृपा के पंडित आश्रम दर्शना। जिस दिन बिहारी जी के मंदिर पर विराजमान बिहारी जी और रसो हम पहुंचे प्रभात में स्थिति सूर्य हो, मैं जल में रस हूँ और सूर्य और चंद्रमा की किरणों में भी बिहारी जी है। जिस समय आग की स्थिति ये हो जाएगी, जिस समय गंगा जी में और आपको सामान्य जल में बिहारी जी दोनों में बराबर दिखने लगेंगे, जिस समय चराचर जगत में केवल बिहारी जी ही बिहारी दिखाई पड़ेंगे, वही हमारा अंतिम सोपान है, वही हमारी आत्मा में स्थिति है, वही कृष्ण दर्शन है, वही कृष्ण रूप हो जाना है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सो जाने ये देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता। समस्त चराचर प्रकृति उसी परमात्मा में विलीन होती है, उसी से उसकी स्थिति रहती है, उसी में उत्पन्न होती है, उसका विलास है। मित्रों, ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मोटी बात महाप्रभु चैतन्य ने हमें समझा दी। हम बच्चे हैं, हम ज्यादा समझ नहीं सकते, उन्होंने हमें कह दिया कि बस हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भगवान ने समस्त गीता पढ़ने के बाद बताने के बाद अंत में कहा कि मैं परम गोपनीय बात तुम्हें बता रहा हूँ, मनमना हो मधुभक्त हो मध्यादी माम नमस्कार, मधुभक्त मध्यादी माम नमस्कार करो, बस तुम मुझ में ही स्थित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वधर्मान परिस्थिति वाम एकम अहम ताम सर्व पापे जो मोक्ष इत्यादि मास्टर। मैं पाप गुरु नहीं जानता, मैं संसार प्रकृति नहीं जानता, मैं डाकू चोर नहीं जानता, मैं राधा कृष्ण भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो केवल हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। बच्चा नहीं जानता है कि आग क्या होती है, हम भी नहीं जानते, लेकिन आग से हम खाना बनाते हैं। इसी तरह से ईश्वर को ये कहना कि मैं तत्व से जानता हूँ, कोई नहीं जानता। भगवान ने कहा कि मुझे तो चराचर देवता से नहीं जानते, कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका मैं मूल आदि कारण हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं ही इसका माता हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका पितामह हूँ। बीजम पवित्र ओंकारम वेदतामयी जय, उसके अतिरिक्त है क्या? तो उसको जानना संभव नहीं है, केवल उसका नाम गुण करता करना ही हमारा कर्तव्य है। अविभक्तम के भूतेषु विभक्तम योजयेत्तम, अविभक्त परमात्मा चारों तरफ व्याप्त है, विभक्त से हमारी तरफ लगता है। हमारे शरीर को कोई सदाकाल कहता है, कोई जिलाधिकारी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब मिथ्या है, सब मिथ्या संयत है। अपने माता पिता के लिए मैं मेरा नाम कुछ है, आपके लिए मेरा नाम कुछ है, उसके लिए कुछ है, ये दोनों ही सरमाया है। वास्तव में देखा जाए तो ना मैं ये हूँ, ना मैं वो हूँ, ना वो हूँ, मैं उसी ईश्वर के स्वरूप में स्थित, अक्षर स्वरूप में स्थित, चैतन्य स्वरूप में स्थित, परमात्मा स्वरूप में स्थित, सच्चिदानंद रूप शिव शिव। वही सच्चिदानंद स्वरूप शिव शिव हो शिव हो शिव। मित्रों, भक्ति से बढ़कर के कोई मार्ग नहीं है, भक्ति से ही भगवान वश में हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बहुत बहुत दीपावली के अवसर पर मंगल शुभकामनाएं हैं। आपको मैंने बोर किया इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके साथ बैठ करके थोड़ी बातें करके मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसी गोष्ठी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। मेरा वार्तालाप उससे चलता रहता है, तो कहीं मुझे हृदय में प्रश्न उठते हैं, तो कहीं वो उसका उत्तर देता है, क्योंकि उपग्रष्टा अनुमंता चर भरता भोक्ता महेश्वर। उपग्रष्टा अनुमंता चर वो अनुमंता भी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं जाऊँ, क्यों कह रहा नहीं जाऊँ, चलो हाँ चले जाओ। उपग्रष्टा अनुमंता चर भरता भोक्ता महेश्वर, लोग मुझसे परामर्श देते हैं कि आप ये करिए वो करिए। मैंने कहा भाई तू ईश्वर है, जब मुझे ईश्वर मेरे हृदय में विराजमान है, वो मुझे सलाह देने के लिए उपलब्ध है, तो मैं तुम्हारी राय लेने के लिए बाध्य नहीं हूँ। या तो आप ईश्वर की राय लीजिए या तो मनुष्य की राय लीजिए। तो आपके हृदय में ईश्वर विराजमान है, उपद्रष्टा अनुमंता चर भरता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा आप ही चौकता देवी स्मृत पुरुषा पर। तो हृदयस्थ परमात्मा से परामर्श लीजिए, हृदयस्थ परमात्मा वही महाचैतन्य प्रभु।
कोई दूसरा सत्ता चाहे
जितने भी अनंत संत हैं, महाप्रभु चैतन्य चाहे जितने भी संत हैं, उनका नाम कोई अलग नहीं, वो उस महाचैतन्य का ही एक भाग है। वो आपके हृदय से ही है, उससे परामर्श कीजिए, उसके साथ रहिए, उसके साथ आनंद कीजिए, सब कुछ आनंद मंगलमय ही है। सब शुभ है, तमसो माँ ज्योतिरम गमय, असतो माँ सदगमय। हम समस्त निकल करके परमात्मा की तरफ चले।
आपकी
जो मंडली है, इस मंडली में ईश्वर सदैव विराजमान रहे, वो रहता ही है। जहाँ आप कीर्तन करते हैं, जहाँ आप भक्ति में रहते हैं, वहाँ नारायण रहता ही है। लेकिन हम सोचते हैं कि वो चतुर्भुज रूप में आकर के खड़ा हो जाएगा। मित्रों, कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में परमात्मा के चतुर्भुज दर्शन नहीं होंगे। हमारी प्रार्थनाएं इतनी शुद्ध नहीं है कि ऐसा हो सके। श्रीमद् भागवत में बड़ी छोटी सी कथा आती है, मैं अगर आपका समय ज्यादा नहीं ले रहा हूँ तो मैं इसमें दृष्टिता करता हूँ। नारद जी अपने पूर्वजनों में आप कथा आती है, नारद जी दासी पुत्र थे, संत आकर एकत्रित होते थे। वहां पर नारद जी की माँ ने उन्हें नारायण नाम का बता दिया कि नारायण नाम है। उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया शांति काटने से। फिर नारद जी अकेले हो गए, जंगल में जाकर के वो कोलाहल करे, भगवान को गृह में बुलाए। भगवान ने हृदय में दर्शन दिया और उस दर्शन को करके नारद को बड़ी शांति प्राप्त हुई। इसके बाद भगवान अदृश्य हो गए। फिर वो चिल्लाते रहे, तब आकाशवाणी हुई कि नारद उससे अधिक दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तुम्हारे जब वासनाएं क्षीण हो जाएंगी, जब मेरी भक्ति से तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाएगा, तब तुम समय के बाद काल में मेरे पार्षद हो जाओगे। इसलिए मित्रों, आज हम यह आशा करें कि गोवर्धन जी आगे आकर के प्रकट हो जाएंगे, या कृष्ण जो है चतुर्भुज रूप में हो जाएंगे, या हम उनके साथ इस तरह से हो जाएंगे, या राधा को कृष्ण जिस तरह से उपलब्ध है वैसे हम हो जाएंगे। मित्रों, काल के प्रभाव में ऐसा बहुत कठिन है। इसलिए हमें तो उसको हर रूप में देखने का, क्या हम ये नहीं देख पाते कि याचक हमारे पास आकर कहता है मुझे भीख दीजिए, मुझे मेरी भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, नहीं कहता है? आप उसकी आंखों में ईश्वर को नहीं देखना देखने का अनुभव करते? कुत्ता बिल्ली गाय भूखी है आपके पास आती है, क्या उसमें कृष्ण नहीं देख रहा है? उसके अंदर कृष्ण को देखने का अभ्यास करिए। सब शरीरों में, शूद्र में, चांडाल में, चराचर जगत में, वृक्षों में, वनस्पतियों में उसको देखने का अभ्यास कीजिए। मैं समझता हूँ कि कब सही सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा। श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने अपने भागवत धर्म में यही कहा है वैष्णव के लिए कि वो सब जगह सब रूपों में केवल मुझे ही देखता है। इस प्रकार से निदांत सुलभता से परमात्मा हमें समझ होने के लिए सरल हो जाता है। मित्रों, में परम संत श्री नारायण जी महाराज को पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को मैं पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूँ। गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अवसर होगा तो मैं पुनः आपकी मंडली में गाते बजाते आपके साथ फिर कभी परिक्रमा करेंगे, फिर कभी अवसर प्राप्त होगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
बड़े आनंद की बात है
प्रशासक
हैं,
हमारी मंडली में पधारे और एक अधिकारियों के लिए भी आत्माओं का विचार करते हैं, वेदांत इत्यादि भी देखे हैं। इसलिए इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और इनका हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा मैं ये निवेदन करूंगा आप लोगों को, यदि सभी कुछ ब्रह्म नहीं है और भगवान ही है, ये अज्ञानता की तैयारी है। थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना चाहिए। खलु इदम ब्रह्म जो कहा जाता है,